فاتحه. اعوذ باللہ من الشیطان اللین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی الرسول السخلین، محبوب رب المشرقین المغربین، جد الحسن والحسین، ابو القاسم محمد. اللہ وَلَا اَهْلِ بَيْتِهِ طَيِّبِينَ الطَّاهِرِينَ الْمَعْصُومِينَ الْمَظْلُومِينَ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شاست حسین، بادشاست حسین، دینست حسین، دین پناست حسین، سرداد نداد در در دست یزید، حقا کے بنا لائی لاست حسین. صلوات پڑھے محمد. عزادارانِ امام، خیصر باب، خیصر باغ بامبے کی 1443 ہجرہ کی 2021 کی یہ پہلی مجلس ہے. کل کی مجلس چاند رات والی مجلس تھی، اور آج سے یہ پورا عشرہ جو آلموسٹ 70-80 سال سے ہو رہا. اللہ اس مرحومہ کے درجات کو بلند کرے انشاءاللہ. بڑا قدیم عشرہ ہے بامبے کا، اس عشرے کی یہ پہلی مجلس. کل جہاں ٹاپک چھوڑی تھی وہیں سے میں لے کے چلوں گا انشاءاللہ. میں نے خواجہ اجمیری کی مشہور رباعی سے مجلس کا آغاز کیا، کل بھی اسی سے کیا تھا، آج بھی اسی سے کیا. اس لیے کہ جس پیریڈ سے اس وقت شیب جاری، یہ کووڈ کا زمانہ ہے، پوری دنیا لاک ڈاؤن، مختلف پریشانیاں، بزنس ڈاؤن ہو گیا، خوف پیدا ہو گیا، ایک ڈر پیدا ہو گیا، اور ہر انسان پریشان ہے. اتنا پریشان، آپ کسی سے دنیا میں بات کرو، یہ صرف انڈیا کی بات نہیں کر رہا میں، پوری دنیا میں جہاں میں جاتا ہوں بات کرتا ہوں، سب کو ڈر ہے. ڈر کس کا ہے؟ کہیں وائرس ہمارے گھر میں نہ آ جائے. صرف اس وائرس کا ڈر ہے جو نظر نہیں آ رہا. یہ ہے کیا وائرس؟ بالکل نظر نہیں آ رہا، کسی کو پتا نہیں کیا چیز ہے، کیسا آتا ہے یہ بھی نہیں معلوم. اب یہ سارے پریکاشنز ہیں، ماسک کا لگانا، ڈسٹینسنگ کا مینٹین کرنا، ویکسین کا لینا، یہ سارے پریکاشنز ہیں، لیکن ریئل وائرس کسی کو نہیں معلوم ہے کیا چیز. ویسے وائرسز نظر بھی نہیں آتے، جتنے دنیا کے وائرسز ہیں بالکل ہڈن ہیں، پوشیدہ ہیں. اللہ نے اس وائرس کو بھیج کے ہمارے کانشیس کو ہلایا ہے، شعور کو بیدار کیا ہے، کہ بڑے غرور اور تکبر میں زندگی گزار رہے تھے. جتنے بڑے بڑے لوگ تھے نا، جو یہ سمجھ جاتے کہ ہمارے پاس کوئی نہیں آ سکتا، ان سب کے پاس آنا پڑا، سب کو اپنا سر جھکانا پڑا. ڈر ایک ہی چیز کا ہے، کہ موت نہ آ جائے. یہاں امام علی کی ایک سیئنگ ہے، موت کا خوف، موت کا ڈر. مولا علی کہتے ہیں کہ تم موت سے کیا ڈرتے ہو، موت خود تمہاری حفاظت کرتی ہے، موت خود تم کو پروٹیکٹ کرتی ہے. لیکن ہم بالکل، آپ ڈریں، آپ، میں یہ نہیں بولا کہ وائرس سے آپ ڈرو مت، 100% ڈرو. جو ڈاکٹرز بولتے ہیں اس پہ عمل کرو، جو گورنمنٹ کے نام سے اس پہ عمل کرو، لیکن یہ ذہن میں رکھو کہ یہ ساری چیزیں کرنے کے بعد بھی پروٹیکٹ کرنے والا کوئی اور ہے، بچانے والا کوئی اور ہے. وہ اگر چاہے تو وائرس تم سے ٹکرائے گا اور واپس چلا جائے گا. اس کے لیے یہ محرم ہے، محرم ایک بلیسنگ ہے، بلیسنگ ہے، प्रैक्टिस नहीं है, ये शुक्र अदा करो कि तुमको मुहर्रम मिल गया ये साल का। कितने ऐसे आपके बांद्रा के लोग हैं जो लास्ट ईयर थे, अभी तक थे, बहुत जल्दी चले गए, उनकी एज भी नहीं थी। बहुत ही अनफॉर्चुनेट डेथ जिसको बोलते हैं आप, हो गया, खत्म हो गया। तो उसके लिए ये मुहर्रम हमारे लिए एक ब्लेसिंग है। अगर जिंदगी चाहते तो हुसैन इब्न अली से ट्राई टू गेट क्लोज टू हुसैन, अगर जिंदगी चाहते। मैंने बहुत बड़ी बात की है, अगर तुम अपनी लाइफ का प्रोटेक्शन चाहते तो गेट क्लोज टू इमाम हुसैन। देखिए मौत तो आना ही, मैं ये नहीं बोला कि अगर इफ यू गेट क्लोज टू मौला हुसैन तुमको मौत नहीं आएगी, 100% आएगी। वक्त है, निकल जाएगा, जब अल्लाह का रसूल नहीं रहा तो हम रहेंगे, मौत तो 100% है, लेकिन ऐसी अनफॉर्चुनेट डेथ नहीं होगी अगर तुम इफ यू गेट क्लोज टू इमाम हुसैन। अगर तुमने इमाम के लिए काम किया तो तुम जिंदा रहोगे, यह मैं हमेशा बोलता हूं, यह बात इसीलिए बोलता हूं कि पूरी दुनिया को देखने के बाद अंदाजा होता है कि कैसे कैसे लोग जिंदा हैं आज। जिंदगी का मतलब ये लाइफ में नहीं, मर गए 100-100 साल, 200-200 साल हो गए, लेकिन आज भी जिंदा। जैसे एक ख्वाजा अजमेरी, कितने साल पुराने, मैंने कल एक बात बोली थी कि कराची में भी एक है जैसे आपके हाजी अली, मैंने कहा था कि कराची का वाले का नाम मुझे याद नहीं, ये मजालिस खैसरबाग की पूरी दुनिया सुन रही। मुझे फौरन कराची से व्हाट्सएप आया कि मौलाना आप भूल गए थे ना, मैंने कहा हम भूल गए थे यार, नाम याद रखना थोड़ी जरूरी, मैं निकाल लूंगा गूगल से, इसलिए कि गूगल आजकल इतना अच्छा है, कमाल है कि हर चीज मिल जाती है वहां से, और टेक्नोलॉजी को यूज करना ये बहुत जरूरी है आज के जमाने में, आप साथ रहना टेक्नोलॉजी के। बहरहाल उन लोगों ने नाम भी भेजे, इनका नाम है सैयद शाह अब्दुल्ला गाजी, जो कराची वाला मैं बोला, आपको मालूम ये कब के, यू कैन इमेजिन जो मैं बोल रहा ना, इफ यू वर्क फॉर इमाम हुसैन तो हमेशा जिंदा रहते, कैन यू इमेजिन ये कब, कौन से पीरियड के, चौथे इमाम की शहादत 95 हिजरी में हुई, ये 98 हिजरी में पैदा हुए, आप इमेजिन करो कब के, ऑलमोस्ट 1300 ईयर्स, 1300 ईयर्स, 98 हिजरी। आप गूगल पे जाएंगे तो इनका नाम लिखेंगे तो पूरी डिटेल आ जाएगी आपको, 98 हिजरी में पैदा हुए, पांचवें इमाम का जमाना, और इनकी डेथ है 151 हिजरी, छठे इमाम का जमाना और सातवें इमाम का जमाना। ये ही ट्रेवल ऑल द वे फ्रॉम बगदाद, इनको मौला ने भेजा था और ये कराची आए। कराची का ये इतना इंपॉर्टेंट बंदा है पूरी सिटी का कि अगर आप इनका मजार देखे, कराची पूरी सिटी नीचे है और ये पानी जो है ऊपर है, समंदर का पानी जैसा बॉम्बे है ना, ऐसा ऐसा पानी, कभी भी डूब जाएगा, हम बोले डूब जाएगा शहर, लेकिन बचाने वाला कोई और है। ये ट्रस्ट को पैदा करोगे तुमको तुम्हारी जिंदगी को बचाने वाला कोई और, ये है मौला हुसैन की ताकत। ये बंदे ने उस दौर में, आप सोचो 95वें इमाम का जमाना, ऑलमोस्ट 1300 ईयर्स हो गए, उस वक्त कराची सिटी नहीं थी जैसा आज है, 1300 ईयर्स पहले कुछ भी नहीं होगा, लेकिन इस बंदे ने पूरे अपनी फैमिली को वहां पे, पूरा खानदान को छोड़ के यहां आया। क्यों आया? हुक्मे इमाम से काम करने का नतीजा देखो, मैं आपको आज कई एग्जांपल्स दूंगा। आने के बाद इन्होंने सिंध में शियत को प्रोपोगेट किया। आप इंसाफ से बोलो, बनी उमैया की हुकूमत चल रही वहां पे, यजीद जैसा जालिम के बाद मरवान आया, अब्दुल मलिक इब्ने मरवान आया, वो कैसे कैसे जालिमीन थे ये लोग, बनी उमैया का, पूरा बनी उमैया का पीरियड, कि जहां पे करबला का वाकया हो गया 61 में 98 में पैदा हुआ, 61 से आप सोचो चौथे माह 95 में शहीद हुए, अब्दुल मलिक इब्ने मरवान ने आपको खत्म किया, वलीद ने, उसके बाद पांचवें इमाम का पीरियड आया, ये पैदा हुआ, छठे इमाम क्या, सातवें इमाम के जमाने में, उस वक्त इमाम क्या करते हैं, पांचवें इमाम और छठे इमाम के बारे में ये कि 18,000 स्टूडेंट्स थे इनके, उस जमाने का पॉपुलेशन, उस जमाने की गवर्नमेंट, उस जमाने का जुल्म, उसके बाद 18,000 स्टूडेंट्स को पैदा करना, क्यों पैदा किया? आज जितनी आपके सामने साइंस है, फादर ऑफ द केमिस्ट्री कौन है, फादर ऑफ द केमिस्ट्री, आज जो पूरा बेस है साइंस का वो केमिस्ट्री के ऊपर है ना, पूरी मेडिकल साइंस, पूरा जो स्टार्स तक आप बात कर रहे हैं ये सारी केमिस्ट्री है। जो स्टूडेंट्स है वो जानते हैं हु इज फादर ऑफ केमिस्ट्री, ये छठे इमाम का शागिर्द है, इमाम का स्टूडेंट था। एक चीज हमेशा याद रखो, मैं हमेशा बोलता हूं ये बात कि इल्म आएगा, नॉलेज आएगी, एजुकेशन करोगे तो तुमको इमाम समझ में भी आएगा। मैं खसरबाग के मेंबर से बोल रहा हूं, पूरे यूथ को, पूरी दुनिया सुन रही इस वक्त मुझे डिफरेंट चैनल्स के ऊपर, मैं सबको बोल रहा कि अगर एजुकेशन नहीं लोगे, खाली मैट्रिक करोगे, इंटर करोगे, ग्रेजुएशन करोगे, घर में बैठ जाओगे, धंधा करोगे तो कोई फायदा नहीं। आज का जमाना ग्रेजुएशन का नहीं, आज का जमाना मास्टर्स का जमाना है, आज का जमाना प्रोफेशनल कोर्सेज में जाना। मैं स्टूडेंट्स को पूरी दुनिया में यह बात बोलता हूं, अमेरिका में भी बोला, मैंने ऑस्ट्रेलिया में भी बोला यह बात कि बाहर से लड़के आके पढ़ रहे, लड़कियां पढ़ रहे, तुम लोग याद है कि क्यों नहीं पढ़ते? इसलिए कि जितना एजुकेशन हासिल करोगे उतना इमाम अली समझ में आएंगे तुमको। मैं क्या बोल रहा यार, जहालत में रहोगे तो ना करबला समझ में आएगा ना इमाम अली समझ में आएंगे। इमाम अली किसी जाहिल को, मैं बड़ी बात बोल रहा गौर से सुन, मैं यूथ मेरा बैठा हुआ है, इमाम अली कभी भी किसी जाहिल को सीने से नहीं लगाएंगे, कभी नहीं लगाते। इमाम को चाहिए नहीं जाहिल, इमाम को पढ़ा लिखा चाहिए। सेम चीज अगर आज तुम इल्म को हासिल करोगे, एंड वी आर ऑल वेटिंग फॉर अवर इमाम, जमाने के इमाम का इंतजार कर रहे हैं, इमाम का इंशाल्लाह 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 जब भी जोहर हो हमारी जिंदगी में, तो आप क्या समझ रहे जाहिल इमाम की फौज में रहेंगे? इमाम को इंजीनियर्स चाहिए, इमाम को डॉक्टर्स चाहिए, इमाम को सीएस चाहिए, इमाम को आर्किटेक्ट्स चाहिए, इमाम को आईटी प्रोफेशनल्स चाहिए। इमाम की कैबिनेट में कोई जाहिल नहीं रहेगा। आज की यह टेक्नोलॉजी नहीं, जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है उसके साथ इमाम उसको खरीद करेंगे, जॉब्स उसके रहेंगे। इसलिए जितना एजुकेशन आएगा तुमको उतना तुम खरीब हो सकते। अब यहां प्लीज मेरा जुमला गौर से सुनना, मेरा नहीं है, इमाम अली के सेइंग है। मैं यूथ को बोल रहा, पूरी दुनिया के लड़कियों को, लड़कों को, और इंडियंस को भी बोल रहा जो इंडिया में मुझे सुना जा रहा, मौला अली की सेइंग है, प्लीज गौर से सुन, इमाम की एक लाइन की सेइंग है लेकिन कंप्लीट मैसेज है इसमें। मेरा मौला ये बोलता, और मौला ने कब कहा, 40 हिजरी में, जब मौला की शहादत से पहले। वो कैसा पीरियड था? वो ऐसे जाहिलों का पीरियड था कि ऐसी जहालत का पीरियड था कि उस पीरियड में इमाम अली का जुमला, इमाम अली का एक सरमन है, गौर से सुनो, सरमन है इमाम अली का। इमाम अली अपने सरमन में पूरा मुसलमान बड़ा जाहिल कमबख्त बैठे हुए, इमाम अली बोलते हैं सामने से पानी बहरा, आप शार जिसको बोलते, वहां पे लोग दजला का पानी, कूफे का वाकया, मौला ने उस पानी को देख के बोला कि आज अली चाहे तो इस पानी से पूरी दुनिया को रोशन कर दूं। लोगों ने कहा हाउ इट इज पॉसिबल, मौला क्या बोले, ये पानी देख रहे तुम, इससे मैं चाहूं, कब बोला, 1400 साल पहले, मैं चाहूं तो पूरी दुनिया को रोशन कर दूं, इलेक्ट्रिसिटी आ जाए। क्या बोल रहा यार, क्या बोल रहा, आज दुनिया रोशन हुई 100 साल 150 साल पहले, मौला बोले मैं 1400 साल पहले कि मैं दुनिया को रोशन कर दूं, ये इल्म है ना। लेकिन वो दुश्मनी वो गर्ज ऐसा था, अली को एक्सेप्ट नहीं किया, कहने लगे या अली तू करोगे, इससे रोशन करोगे, पानी से कैसे रोशन होगी? तो मौला अली ने कहा मैं चाहूं तो करो। उस वक्त तक साइंस इतनी एडवांस नहीं हुई, उस वक्त तक लोगों के पास इतना इल्म नहीं आया। ये जाहिलों ने क्या कहा मालूम, जब मौला ने कहा अच्छा अली ये बता मेरे सर में बाल कितने, जुल्म अजीम। मौला ने पलट के कहा कि ऐ शख्स सुन, अगर मैं बता भी दूं तो तू गिन नहीं सकता। क्या अब जब मौला को कैसा सबर किया, मौला ने क्या कर सकते थे, यही जुमला अल्लाह के रसूल ने जंगे खैबर में कहा था। आज मैंने रिक्शेरों की मजलिस में बोला ये जुमला, एक जुमला बोल रहा खाली, अल्लाह के रसूल ने जब जंगे खैबर फतह हुई, اور مولا علم لے کر واپس آ رہے تھے, مرحب کو مار کے در خیبر ختم کر دیا تھا. تو اس وقت اللہ کے رسول نے کا ایک سرمن ہے, چھوٹا سا ویری شارٹ سرمن, سب مسلمانوں سے کہا سنو اگر میرے بعد آفٹر می تم علی کو بلا فصل مان لو تو اللہ آسمان سے اور زمین سے ساری رحمتوں کو نازل کر دے گا. کتنی بڑی بات ہے, سارے پرابلم سالو ہو جاتے ہیں. آج جو سٹرگل کر رہے نا, یہ چیک دینا ہے, یہ چیک کلیئر کرنا ہے, یہ پرابلم ہے نا, وہ سارے پرابلم کلیئر ہو جاتے ہیں. اس لیے کہ سب حلال کھاتے ہیں. کیا بول رہا ہے, حرام ہی ختم ہو جاتا. تو امام بولتے کہ اگر تم ایکسیپٹ کر لو میرے بعد, علی کو ایکسیپٹ کر لو. پھر پلٹ کے اللہ کے رسول نے کہا مجھے افسوس ہے, آئی ایم سو سیڈ, تم لوگ ان کو ایکسیپٹ نہیں کریں گے, میرے بعد نہیں ایکسیپٹ کریں گے. تو امام علی نے اس وقت کہا کہ میں چاہوں دنیا کو رشتہ. اس کے بعد اب ایک بات اور یاد آ گئی, جب بات آ رہی ہے تو سنی لے. میرے مولا نے کہا کہ میں دیکھ رہا ایک زمانہ, میرے سامنے ایک زمانہ ہے کہ لوگ اپنے ہاتھ کو ایسا اٹھائیں گے ایسا, اور ایک دوسرے کو دیکھیں گے. کیا بول رہا ہے, آپ سمجھے کب بولے مولا, 1400 سال, ایسا ہاتھ اٹھائے گا اور ایک دوسرے کو دیکھیں گے, ہزاروں میل کے فاصلے سے ایک دوسرے سے بات کریں گے. تو لوگ شوق میں آ گئے, کیا اٹ از پاسبل. اس وقت سوال کیا کیا کہ مولا کیا لوگوں کے ہاتھ بدل جائیں گے؟ مولا نے کہا ہاتھ نہیں بدلے گا, وہی ہاتھ ہوگا. آپ انصاف سے بولو, 2003 تک کوئی تصور کر سکتا تھا؟ موبائل میں پکچر کا 2000 تک نہیں آیا تھا, آئی تھنک 2 یا 3 یا 4 میں آہستہ آہستہ, مجھے یاد ہے آئی واز ان کویت, تو وہ جو پہلا فون آیا تھا اور لوگ بڑے شوق سے بتا رہے تھے اس میں پکچر آ رہا, اس میں دیکھ سکتے, کیمرہ آ گیا, یو کین ٹیک پکچر, ایسا بول رہے تھے. کیمرہ پہلے آیا, اس کے بعد یہ آنے لگا. کہ اب جس کے پاس کیمرہ ہے اگر وہ فون تمہارے پاس ہے تو تم ایک دوسرے کو دیکھ سکتے. ٹیکنالوجی اب آئی. مولا نے 1400 سال پہلے بولا, 1400 ایئرس پہلے, کہ اگر میں چاہوں, میں دیکھ رہا وہ زبان کہ ایک دوسرے کو لوگ دیکھیں گے. اور یہی چیز ظہور امام کی علامات میں کہا گیا کہ امام کے ظہور کے بعد انشاءاللہ تو بولو یار, ظہور امام کے ایک سلوات پڑھ لیں بابا سے بولیں,
اللہم صلی اللہ محمد وآل محمد وعجل فرجہم.
امام وہ سینگ ہے جس کو علامہ طالب جوہری نے بھی لکھی, اپنی مرحوم نے اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ ظہور امام کے بعد زمانہ ایسا آ جائے گا کہ 1000 میل سے, وہ انہوں نے 1000 میل لکھا, 1000 مائل کے ڈسٹینس سے لوگ ایک دوسرے سے بات کریں گے. تو جب یہ کہا ایک دوسرے سے بات کریں گے تو اس وقت لوگوں کے سمجھ میں نہیں آیا کہ مولا یہ پاسبل کیسے, اب 1000 نہیں ہے, اب تو 1000 میل دور سے آپ بات کر سکتے ہیں, ٹیکنالوجی اتنی ایڈوانس. تو یہ ساری چیزیں دیکھیں, میں سائنس آف ریپیئرنس میں پوری مجلس ختم ہو جائیں گی, میں روک رہا اس کو. میں انہی لوگوں کی طرف پلٹ کے جا رہا کہ جن لوگوں کی طرف سے آج شیب بھی باقی ہے, حسینیت بھی باقی ہے, اور جنہوں نے کام کیا. یہ صرف میں خیصر باغ کی یہ مجلس موٹیویشن کے لیے, میرے یوتھ کو موٹیویٹ کرنے کے لیے پڑھا کہ یہ محرم کو جو آیا ہے نا, 1443 ہجری کا محرم, یہ پریکٹس کی طرح مت لو. لاسٹ ایئر کی طرح جیسا محرم تھا نا, ویسا یہ محرم مت کرو. یہ محرم تمہاری لائف چینجنگ محرم ہونا, تمہاری زندگی بدلنا. یہ 2 مہینے 8 دن کے بعد تمہارے لائف کے جتنے آبسٹیکلس ہیں ختم ہو جانا. آمین تو بولنے سے کچھ نہیں ہوتا بابا, یو ہیو ٹو ڈو سم تھنگ ان یور لائف. تمہاری دل میں خواہش ہونا کہ میں کچھ کروں. یہ سب سے پہلے اپنے ذہنوں سے نکالو کہ میں بہت پائس ہوں, میں بڑا نیک ہوں, میں نے بڑی عبادتیں کی ہیں. یہ کبھی میں, یہ شیطان کی فکر ہے. میں نے بہت بڑا جملہ بولا, یہ شیطان کی فکر ہے. شیطان نے کہا تھا کہ میں آگ کا بنا ہوا ہوں, یہ مٹی کا بنا ہوا ہے, میں نے اتنے سجدے کیے, یہ کیا ہے, میں اس کو کیوں کروں سر. یہ فکر کو ختم کرو. یہ محرم جیسے میں نے کہا لائف چینجنگ محرم آنا, کہ میں اس محرم میں, آپ روز مجلس میں آ رہے, فرشتہ پہ بیٹھ رہے, آپ روز یہ دعا کرنا کہ مولا مجھے کچھ چانس دو, مجھے موقع دو. میں ان لوگوں کے واقعات صرف اس لیے پڑھا کہ ہمارے ذہنوں میں یہ رہنا کہ اگر یہ کام کر سکتا 98 ہجری میں پیدا ہونے والا, आज तक आपको कोई रोकने वाला नहीं होता, बनी उमैया का जमाना था, उसमें ये हाजी कराची वाले अब्दुल्ला बुखारी ये आए पाकिस्तान, उस जमाने में पाकिस्तान कुछ भी नहीं था, एक ही छोटा सा शहर था, आके इन्होंने काम किया, शियत को प्रोपोगेट किया। 18,000 स्टूडेंट्स इमाम के थे, छठे इमाम के और पांचवें इमाम, 18,000 स्टूडेंट, और उन स्टूडेंट्स को मौला क्या करते थे, उन लोगों को इल्म देते, उनको पढ़ाते थे। मैंने वो यूनिवर्सिटी देखी जो इस्लाम की पहली यूनिवर्सिटी मदीने मुनवरा में थी, मैंने उस जगह की ज्यारत की जहां इमाम जिस जगह पर ठहर के दर्स देते थे, लेकिन ये जालिमों ने सब तोड़ दिया मदीने मुनवरा। मैं ये बात कर रहा लेट 90s की, 98-99 या आई थिंक 2000 तक, 2000 तक मदीने मुनवरा में वो जगह मौजूद थी जहां पे छठे इमाम दर्स देते थे। आज भी वहां पे मदीने मुनवरा में वो घर है कि जहां उस घर के अतराफ में एक इमामजादा भी दफन है, लेकिन आज सब 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 तोड़ दिया उन्होंने, बिल्कुल जमीन दोस्त कर दिया। अगर आप मदीने मुनव्वरा, अल्लाह हमको ज़ियारत नसीब करे, आप जाएं तो आप देखें, लेकिन हम लोगों ने देखा तो वहां पे मौला का तरीका क्या था, स्टूडेंट्स को तैयार करते हैं, तैयार करके देखे। शियत उस वक्त से मदीने में थी, कोई कम्युनिकेशन सिस्टम नहीं है, ना वाईफाई है, ना व्हाट्सएप है, ना फेसबुक है, एक दूसरे को कैसे मैसेज देंगे, एक दूसरे को कैसे प्रोपोगेट करेंगे, एक दूसरे को टीचिंग से मासूमीन कैसे पहुंचाएंगे, कोई कार्स नहीं है, कोई गाड़ी नहीं है, कोई प्लेन नहीं है, मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन कैमल है या हॉर्स है। ऐसे मौके पर इमाम क्या करते थे, मिसाल के तौर पर एक मोमिन को तैयार किया, उसको तैयार करके बोलते थे कि तू फुला मकाम पे जा, फुला सिटी को जा, और जाके ये तालीमात जो हमने तुमको एजुकेशन दिया है अहले बैत के बारे में, तुम जाके ये टीचिंग्स ऑफ प्रॉफिट और टीचिंग्स ऑफ मासूमीन दुनिया तक पहुंचाओ। तो वो उस सिटी में जाता, वो सिटी में जाता, वो सिटी में जाता। इस तरह इमाम जो है अपने स्टूडेंट्स को, आज दुनिया में शियत फैली है, आज पूरी दुनिया में शियत आई है, वो कैसे आई, आज के जमाने में बहुत आसान है, आज अब एक फोन उठाओ, व्हाट्सएप करो, फेसबुक पर जाओ, पूरी दुनिया की न्यूज आपके हाथ के ऊपर है। लेकिन उस जमाने में ऐसा नहीं था, उस जमाने में ना टेलीफोन कुछ नहीं, यू कैन इमेजिन के कैसा कैसा जमाना था। उस जमाने में ये जो शियत पूरी दुनिया में आई, कभी सोचा ये बात कि ये शियत फैली कैसे, इसलिए कि शिया लोग तो मदीने में रहते थे, ये इंडिया तक शियत आई, यूरोप तक शियत आई, पूरा मिडल ईस्ट में शियत फैली। कैसे फैली? ये स्टूडेंट्स के जरिए फैली, इमाम तैयार करके भेजते थे, और जो स्टूडेंट्स जाते थे वो अपनी पूरी फैमिली के साथ नहीं, पूरा अपनी जान को अपने हथेली पे स्टेक पर रख के जा रहे। बनी उमैया की हुकूमत, नए शहर में जान, आज मैं करता हूं, मैं एक घंटा स्पेंड नहीं करता, एक घंटा एक मस्जिद कर लिया मोहर्रम में तो बड़ी बात हो गई मेरे लिए, मैं जनरल मैसेज दे रहा, बुरा मत मानो, मैं को जब तक बेदार नहीं करूंगा, रिवोल्यूशनरी बातें नहीं करूंगा, तैयार नहीं करूंगा यूथ को, तो यही हैसियत होगा। तो आप सोचो आज हम कितना टाइम स्पेयर कर रहे हैं, जबकि आज सारी फैसिलिटीज है। और ये लोग, प्लीज गौर से सुनो, ये लोग जो जाके प्रोपोगेट कर रहे, प्लीज गौर से सुनो, ये लोग जो जाके प्रोपोगेट कर रहे, इमाम उनको थाउजेंड एंड थाउजेंड डॉलर नहीं दे रहे, पाउंड नहीं दे रहे, दिनार नहीं दे रहे कि जाओ मैं पैसे दे रहा हूं, जाओ काम करो, अपने पैसे से, अपने पैसे से जा रहे लोग जाके शिष्यत के लिए काम किया। ख्वाजा अजमेरी हो, दिल्ली के निजामुद्दीन औलिया हो, बॉम्बे के हाजी अली हो, सैयद शाह बुखारी हो कराची के, ये सारे जो है आपके लिए एग्जाम्पल दूं। मुझे खोजे भाई ज्यादा सुन रहे ना बॉम्बे में, उनको मोटिवेट करने के लिए बोल रहा। आज से 100 बरस पहले जब ये करंट नहीं था, लाइट नहीं थी, खोजे भाइयों के लिए तो एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल। आज का दौर देखो, आज सारी फैसिलिटीज तुम्हारे पास है, तुम्हारे पास पैसा है, तुम्हारे पास घर है, गाड़ी है, औलाद है, कंप्यूटर है, एक जगह बैठ के हजारों मील दूर से तुम अपनी इंफॉर्मेशन दे सकते हैं। सारी फैसिलिटीज के बाद भी हम क्या कर रहे हैं, यही खोजे भाई। आज अगर मैं फखर के साथ ये बोल रहा कि गुजराती में कुरान है, गुजराती में मफाती है, किताबें हैं, तो किसकी वजह से? हाजी नाजी, कभी फातिहा पढ़ी, कभी नमाज शब, मैं जनरल बात कर रहा, बुरा नहीं मान, लोग पढ़ते होंगे नमाज शब में हाजी नाजी का नाम लिया, भावनगर जाते हो तो उनकी लहर पे जाते हो। मैं गया व्हेनेवर आई गो भावनगर, आई ऑलवेज गो टू हिज ग्रेव। इस बंदे का मैंने जब सुना कि वो यहां दफन है, तो मैंने खास तौर पर कहा जाए भावनगर पढ़ता हूं, साल में 2 दफा जाता हूं, आई ऑलवेज से कि मुझे उनके खबर पर लेके जाओ कि क्या बंदा। मैं इतना इंप्रेस हुआ इस बंदे से, उसके बाद अभी इनकी लाइब्रेरी जो हॉस्टल है लाइब्रेरी क्या है पता नहीं, अंबा चौक पे मैं 15 शाबान को था शायद, जो बहरहाल कोई विलादत किया दिन था, मैं भावनगर में, तो मैं खास तौर पे वो जाके उनका जो यतीम खाना है वहां पे वो बच्चों से मिला, हॉस्टल है शायद पता नहीं क्या, कि इस बंदे ने ऐसा काम किया। और किस पीरियड में किया? उस पीरियड में किया कि जब कोई अपने आप को गुजरात में शिया नहीं बोल सकता था। उस पीरियड में काम किया कि जिस पीरियड में ये कोई कम्युनिकेशन सिस्टम नहीं था। मुझे बताया गया कि काट बंदी, उस बंदी में किताबों को रख के ये मुख्तलिफ जगहों पे जाते थे। इनको कोई पैसे नहीं दे रहा था कि मैं स्पॉन्सर करता हूं तुम ये काम करो। आज हमको 1,000 स्पॉन्सर्स है, उसके बावजूद वी डोंट हैव टाइम, वी डोंट हैव टाइम, वी जस्ट से वी आर शिया, हम हवा के चाने वाले। इन लोगों की तरह काम सीखो। आज हाजी नाजी जिंदा है? हाजी नाजी कोई बिलियनर आदमी नहीं था, ट्रिलियनर आदमी नहीं था, दुनियावी लिहाज से नहीं थे, लेकिन वो सबसे बड़ा आदमी था। आज उसको जो रिवॉर्ड मिल रहा, हाजी नाजी के जमाने में हजारों लोग होंगे पैसे वाले, बड़े बड़े सेठ होंगे, बड़े बड़े दौलतमंद होंगे, आज उनका कोई नाम है? कोई उनको पूछता है? कोई उन पर फातिहा पढ़ता? कोई नहीं करता। यह चीज पैदा करो। आज तुम्हारे हाथ में कंप्यूटर है, आज तुम्हारे पास आईपैड है, यू कैन डू वंडर्स। मैं यूथ को बोल रहा हूं, यू कैन डू वंडर्स, तुम कमाल कर सकते। कुछ आर्टिकल्स, हर चीज आज नेट के ऊपर मौजूद है, इधर से इधर से इधर से लिखे एक आर्टिकल, एक पेज लिखो मुहर्रम के ऊपर। ये वो काम है जो तुमको जिंदा रखेगा, ये वो काम है जो तुम काम करोगे। न्यूज़पेपर्स में भी जाओ, फेसबुक पे डालो, डिफरेंट ग्रुप्स में डालो, टॉक अबाउट इमाम हुसैन, टॉक अबाउट ट्रेजेडी ऑफ करबला, छोटी छोटी शॉर्ट स्टोरीज बना के फेसबुक के ऊपर डालो, डिफरेंट ग्रुप्स में डालो। 1,000 आदमी 2,000 आदमी पढ़ेगा, 2,000 आदमी अगर पढ़ ले और एक चेंज हो जाए, तुम्हारी तो बख्शिश हो गई, तुम्हारा तो मकसद पूरा हो गया। और एक चीज याद रखो, अगर इफ यू वर्क फॉर इमाम हुसैन, एक मिनट के लिए काम करो या एक घंटे के लिए काम करो या पूरी जिंदगी काम करो, इमाम हुसैन किसी का रखते नहीं। समझ में आई बात तुम्हारी? मैं क्या बोल रहा आपसे, किसी का नहीं रखते। तुम्हारा वो एक मिनट जो तुमने स्पेयर किया है मौला हुसैन के लिए, मैं एग्जाम्पल दे रहा, एक मिनट जो स्पेयर किया है, वो एक मिनट का पता नहीं इमाम हुसैन तुमको क्या रिवॉर्ड दे दें इसका। तुम्हारी लाइफ कहां से कहां चेंज हो जाए कि इसे मेरे लिए काम किया। ये शियत है। शियत ये नहीं है कि घर में बैठ के अपने बारे में सोचो, बस मी 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 निकालो, अपने पास से मी एंड माई फैमिली को निकालो। ये वेस्ट का स्लोगन है, वेस्ट का स्लोगन है मी एंड माई फैमिली, इस्लाम का स्लोगन नहीं, ये इस्लाम का नारा नहीं। इस्लाम का नारा पूरे माशे को दीन के लिए काम करना। आप सोचो कि 151 हिजरी में तो मर गए कराची वाले, मर गए। आप सोच सकते कभी जाना नसीब हुआ आपको? आप बोलेंगे जाना नहीं है। नहीं, जाओ जरूर, तुम जाओगे तो तुम कराची में देखोगे हजारों की तादाद में इनके मजार पे लोग जाते हैं। हर मजहब और मिल्लत का आदमी जाता है, प्लीज, हर मजहब और मिल्लत का आदमी जाता है और जाकर दुआ मांगता है, उसकी दुआ कबूल होती है। अब अंदाजा लगाओ कि फैज हुसैनी मरने के बाद भी इनकी खबर से है, हुसैन का करम मरने, इन 1300-1400 साल पहले मर गए, लेकिन जो अता मौला हुसैन के जरिए से है, इमामों के जरिए से, इमाम ने अपने गुलाम को भी अता कर दिया। क्यों अता किया? इसने इमाम के लिए काम किया। ये सिर्फ मैं अपने चाहने वालों को, अपने यूथ को, अपने दुनिया में जो मुझे सुन रहा खैसरबाग की दूसरी मजलिस, मैं सिर्फ इसलिए बोल रहा हूं, खैसरबाग का एग्जाम्पल भी वही दिया कि आज अगर खैसरबाग जिंदा है तो सिर्फ आजादारी की वजह से जिंदा है, पैसे के लिए जिंदा नहीं। उनके दौर के जो मिलियनर्स थे सब दफन हो गए, हड्डियां गल गए उनके, लेकिन खैसरबाग का हर साल मुहर्रम में उनका अकाउंट जो वहां के बैंक में अकाउंट है, उनके अकाउंट में प्लस 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 होते जा रहा, तो कोई काम ऐसा करो अपनी जिंदगी में कि तुम्हारा बैंक का अकाउंट जो दुनिया का है ना, जो जमीन के ऊपर जो बॉम्बे में जो आपके अकाउंट है ना, वो कब तक वैलिड है? बड़े बड़े बैंक में अकाउंट है, कब तक वैलिड है? जब तक तुम्हारे जिस्म में रूह है। एक दफा रूह निकल गई तो वो अकाउंट को तुम यूज नहीं कर सकते। कोई एक ऐसा बैंक का अकाउंट नीचे खोलो, क्या बोल रहा यार, नीचे अकाउंट खोलो कि जो नीचे का अकाउंट ऑलवेज प्लस होना। तो अगर दुनिया में तुम ये काम करोगे तो तुमको नीचे का अकाउंट बढ़ेगा। आज तुमको अभी बिरयानी की बात समझ में नहीं आ रही, यू विल रियलाइज टुमारो के काश मैं कुछ कर लेता। इन लोगों के लिए इमाम अली का सरमन है, इमाम अली का सरमन है कि सब ऐसे बड़े बड़े लोग जो अपने आप को सूरमा समझते हैं ना, जब उनके सामने मौत आती तो अपनी जबान को, अपनी जबान को अपने दांतों से ऐसा काटते हैं, काट के इमाम अली कहते हैं, वो कहते हैं कि जब अपने अमालनामे को देखते हैं कि गुड डीड्स तो बिल्कुल नहीं है, सारे के सारे बैड डीड्स है। मैं तो समझ रहा था मेरे पास गुड डीड्स है, तो बैड डीड्स को देख के वो इमाम का चाहने वाला इमाम बोलते हैं कि हमारे चाहने वाले, उस वक्त बोलेंगे कि काश मैं दुनिया में कुछ कर लेता। What I have done in my life, please, मैं बोल रहा कैसे बात की इस मजलिस में बोल रहा कि एग्जाम्पल लो इनका। I do something in your life, जब तुम अपनी जिंदगी में कुछ करोगे तो मौला तुमको हमेशा जिंदा रखेंगे। और ऐसी जिंदगी है दोस्तों, वो एटर्नल लाइफ में, उस एटर्नल लाइफ में ना औलाद काम आती, ना बीवी काम आती, ना पैसा काम आता, ना बॉम्बे के बड़े बड़े फ्लैट्स काम आते। तुम्हारे गुड डीड्स रहेंगे तो तुम्हारे लिए कोई काम। और ये इतना अजीब है कि हियर एंड हियर आफ्टर अगर रियली तुमको कुछ हासिल करना है। और मैं जानता ऐसे लोगों को कि जो ईमान के लिए काम करते हैं वो कभी परेशान नहीं होते, कभी परेशान नहीं रहते, ऑलवेज उनको इमाम की सपोर्ट रहती है। एक सलावत पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद, बस मैं क्या करूं, मेरा वक्त तेजी से निकल गया, ऑलमोस्ट 40 मिनट्स की मजलिस हो गई। मसाइल पढ़ना खत्म करना, पहली मजलिस कैसर बाग की। अब एक रिक्वेस्ट करता है कि जिन जिन के मैंने नाम लिए, अगर तुम शब नमाज पढ़ते हो तो इस नमाज में इन लोगों का नाम लो, एटलीस्ट मैं उनका कुछ एहसान तो उतारू जो उन्होंने मेरे लिए किया, कुछ तो करूं मैं। उनको रिगार्ड कैसे करो, मैं खाली बैठ के सुन रहा हूं, मौलाना पढ़ रहा, मैं सुन रहा, ठीक है तुम सुन रहे, तुम क्या कर रहे हो उनके लिए? एक फातिहा पढ़ो शब नमाज में, खाली एक नाम ले लो, एग्जाम्पल अल्लाहुम्मा अग़फिर हाजी अली, अल्लाहुम्मा अग़फिर हाजी नाजी, बाप का नाम याद नहीं कोई मुश्किल, अल्लाहुम्मा अग़फिर निजामुद्दीन आलम, मिसाल दे रहा मैं, अल्लाहुम्मा अग़फिर खसर भाई। खसर भाई का कितना एहसान है बॉम्बे के शियों के ऊपर, कितना बड़ा एहसान है। मुझे नहीं मालूम कितने लोगों को उनकी ग्रेव भी नहीं मालूम होगी कहाँ है खसर भाई की। आरामबाग में मेरे पूरे फैमिली मेंबर्स हैं, लेकिन कभी मैं ये फिक्र नहीं करा कि लेट्स गो टू खसर भाई, किसी से पूछा भी नहीं होगा। मैं ये नहीं बोला कि सबको नहीं मालूम, मैं जनरल बात कर रहा हूं। इतनी तो हमारी गफलत है, इतनी तो हमारी इग्नोरेंस है। हम गए अपने बाप की कब्र पे गए, वही बड़ी बात है। क्या बोल रहा यार मैं, बाप की ग्रेव में चले गए, यही बहुत बड़ा एहसान कर दिया बाप के ऊपर कि मैं आपकी ग्रेव पे आया हूं। कैसर भाई के पास कौन जाएगा? ये मत करो यार, मत करो, यूथ को बोल रहा, बड़ों को नहीं बोल रहा, हर आदमी को जाना चाहिए बॉम्बे का। जब मैं स्टार्टिंग में आया था बॉम्बे 22 साल पहले अल्हम्दुलिल्लाह, तो मुझे, मैं कभी खसर भाई गया नहीं था, सुनता था, तो मुझे यहाँ के बॉम्बे के लोगों ने कहा था कि मौलाना अगर खैसर बाग में मुहर्रम नहीं करे तो मुहर्रम नजर ही नहीं आता हमको, खैसर बाग की एक मजलिस तो करे तो मालूम होता कि मुहर्रम आया है। तो मुझे बड़ा बोलता कि है क्या चीज है खैसर बाग, तो कहा एक हॉल है, एक मजलिस होती है, मुहर्रम की मजलिस होती है, आपकी मजलिस भी के बाद की मजलिस है, तो कभी मौका ही नहीं मिला था जाने। जब पढ़ने जाने लगा तो जब एहसास हुआ कि खैसर बाग है क्या चीज, तो आप सोचो कि इमाम ने इनके नाम को जिंदा रखा इसलिए कि इन्होंने अपना प्लेटफॉर्म दिया हुसैन के लिए। हमने कितने प्लेटफॉर्म्स दिए मौला हुसैन को, बस बाकी बातें कल सुनना। आप बोलेंगे अब कब तक बोलोगे खसर भाई के ऊपर? 10 दिन बोलूंगा इन लोगों के ऊपर, 10 दिन बोलूंगा डिफरेंट स्टाइल से, डिफरेंट कंट्रीब्यूशन से। इसलिए बोलूंगा कि अगर मेरे पूरे 10 दिन में कोई एक लड़का या लड़की पूरी दुनिया में बोल रहा कि खाली उसके जहन में ये आ जाए कि अगर इन्होंने काम किया तो वाई नॉट मी, तो मेरा अशरा खसर बाग का कामयाब हो गया। पूरों को चेंज नहीं कर सकते आप। नबी मूसा ने 500 ईयर्स तबलीग किए, 500 ईयर्स कितने जमा किए? 18। सिर्फ 18 मोमिन है नबी मूसा के। करबला में 61 हिजरी में हजारों लाखों की तादाद में मुसलमान थे, जमा कितने हुए? 72। पूरी दुनिया को चेंज नहीं कर सकते आप। मेरे पूरे 9-10 दिन के अशरे में पूरी दुनिया बोल रहा, सिर्फ बॉम्बे नहीं बोल रहा। बॉम्बे वाले तो माशाल्लाह सब चेंज हो गए, बॉम्बे वालों की तो बात ही नहीं कर रहा मैं जनरल बात कर रहा कि एक लड़का या लड़की भी चेंज हो जाए तो ये तुम्हारी कामयाबी है। बस मेरी दुआ है एक आवाज से बुलंद सलवात पढ़ लो, बस दोस्तों। मौला आबाद रखे आप सबको, मौला सलामत रखे, अल्लाह हमारी इस अज़ा को कबूल करे। बहुत बड़ा गम, बहुत बड़ी मुसीबत, ये वो अय्याम है दोस्तों कि आज 2 मुहर्रम की रात है, 2 मुहर्रम की रात है। मैंने कितनी आसानी से बोला, कितना इंतज़ार था ना इस मुहर्रम का कि मुहर्रम आए, मुहर्रम आए, मुहर्रम आए। क्यों इंतज़ार था? कि घर में मिंबर सजेंगे, मौला हुसैन हमारे पास मेहमान आएंगे। हम सब के लिए एक बहुत बड़ी इज्जत और ऑनर है कि इमाम हुसैन हमारे पास आए। दोस्तों आज 2 मुहर्रम का दिन, पहली मुहर्रम का दिन गुजर गया, शबे 2 मुहर्रम आ गए। आपको मालूम जो 28 रजब को काफिला चला था करबला से मदीने से जो काफिला चला था वो काफिला मंजिलों को तय करता हुआ कल करबला पहुंचा है 2 मुहर्रम को। लेकिन जब चला था तो क्या हाल था मदीने का? मेरा मौला हुसैन पूरे काफिले को तैयार करें, तैयार करने के बाद जब 27 रजब की रात आई तो हुसैन ने कुछ शहजादियों ने कहा था कि हमको नाना की लहत पे जाना है, माँ की लहत पे। बहनों को लेके हुसैन नाना की लहत पे भी आए, माँ की लहत पे भी आए। आने के बाद रात में जब वापस आए बैतुल शरफ को, सुबह नमाज फजर के बाद इमाम ने कहा कि बहन सोगरा को खुदा हाफिज बोल दो, काफिला चलने की तैयारी है। बीबी ने सारे सबको कहा कि जाके फातिमा सोगरा को खुदा हाफिज बोल। आप तसव्वुर करो, इमाम की ये वो बेटी है कि जिसको ये पता चल गया था कि इमाम हुसैन साथ लेके नहीं जा रहे, पूरा घर खाली हो जाएगा। और यही हुआ, जनाब अली अकबर गए, बहन के सर पे हाथ रखा खुदा हाफिज का, बहन ने अली अकबर को देखा और कुछ नहीं कहा। अब्बास ने जाके गले लगाया भतीजी को, अब्बास से भी कुछ नहीं कहा। माँ ने जाके सर से प्यार किया, कुछ नहीं कहा माँ से भी। रबाब भी गई, लैला भी गई, उम्मे फरवा भी गई, आखिर में शहजादी उम्मे कुलसूम जाके सीने से लगाया, उस वक्त भी बीबी ने कुछ नहीं कहा। लेकिन जब जनाब जैनब सोगरा के पास गई तो उस वक्त बीबी सोगरा रोने लगी। रोते हुए बीबी जागती है कि अगर मेरी फूफी जैनब अगर बोलेंगी तो हुसैन जरूर साथ लेंगे। रोते हुए इस बच्ची ने बीबी जैनब के दामन को थाम के कहा, फूफी अम्मा आप मेरी सिफारिश कर दो। जैनब ने सोगरा का हाथ पकड़ा, पकड़ के मौला हुसैन जिस हुजरे में थे उस हुजरे की तरफ जाने लगे। दूर से हुसैन ने यह मंजर देखा कि जैनब सोगरा को लेके आ रही है, तो पुकार के कहा, बहन सोगरा की सिफारिश नहीं करना। तो जैनब ने कहा कि भैया बेटी पूछना चाहती है आप साथ क्यों नहीं ले रहे? अरे आप साथ ले लीजिए, इसकी तबीयत सही हो जाएगी। बस ये कहा, अब हुसैन रोने लगे, दोस्तों तुम तड़प के रोगे, मौला हुसैन ने जो रीजन दिया, रोने लगे हुसैन। अब तक सोगरा रो रही थी, अब हुसैन रोने लगे। इमाम ने कहा कि बहन तुम जानती हो जो मेरी शहादत के बाद सरों से चादरें छीनी जाएंगी, काफिला दया ब दया जाएगा, आहिस्ता नहीं रोना, आहिस्ता नहीं रोना, दो मुहर्रम की मजलिस है। उसके बाद इमाम कहते रोते हुए, बहन तुम जानती हो मेरी जो औलाद है कोई मेरे नाना जैसी है, कोई मेरे बाबा जैसी है, सोगरा की सूरत मेरी माँ फातिमा जैसी है। अरे हुसैन ये कभी बर्दाश्त नहीं कर सकता, जिसका चेहरा मेरी माँ फातिमा का चेहरा हो उसके सर से चादर छीने, उसको बाजारों में जाना पड़े, उसके बाजुओं में रसन बंधे। बस दोस्तों उसके बाद वो मंजिल आई, बस मैंने मजलिस खत्म कर दी कि इमाम ने हुक्म दिया कि एक एक बीबी सवार हो जाओ। रावी कहता है कि हर तरफ पर्दे लगाए गए, जब पर्दे लगाने के बाद अमारी अंदर आई, रावी कहता है कि एक बीबी बाहर निकली तो अली अकबर आगे बढ़े, अपने जानू को तय किया और इस बीबी को सवार किया तो पता चला ये लैला सवार हो रही। फिर रावी कहता है कि हमने देखा कि एक बीबी है जिसकी गोद में छोटा सा बच्चा है, एक छोटी बच्ची हाथ पकड़ के चल रही, वो बीबी आई तो चौथे इमाम आगे बढ़े, पता चला ये रबाब थी, अली असगर और सकीना सवार हुए। उसके बाद उम्मे फरमा को हासिम ने सवार किया, बीबी उम्मे कुलसूम को मौला अब्बास ने बहन को सवार किया, मौला हुसैन बैठ के ये मंजर देख रहे। फिर कहता है कि ऊंट अंदर आया, हमारी अंदर आई, अंदर आने के बहुत अब्बास ने जाके हुसैन से आहिस्ता से कुछ कहा, मौला हुसैन अपने मकाम से उठे, अमारी के करीब आगे ठहर गए, अली अकबर भी ठहर गए, अब्बास भी और औरो मोहम्मद भी। अब जो बीबी बाहर आई, जब बीबी करीब आई अमारी के, तो अली अकबर ने अपने बाद जानू को तह किया, अब्बास ने महमिल के पर्दे को हटाया, हुसैन ने बाजू को थामा, पता चला अली की बड़ी बेटी ज़ैनब सवार होगी, यही ज़ैनब है। और 11 मुहर्रम की सुबह है, बीबी तड़प के कह रही, अब्बास अरे मदीने से चलते वक्त तुमने मुझे सवार किया था, आके देखो तुम्हारी बहन के बाजुओं में रसद है और सर पे चादर नहीं है। इलाही व सैयदी व मौलाया, परवरदिगार मेरे मौला हुसैन का वास्ता, उनके बच्चों का वास्ता, मेरी शहजादी ज़ैनब, शहजादी उम्मे कुलसूम का वास्ता, इन आवाज़ों पे तू अपनी रहमत को नाजिल फरमा। सब मिलके आमीन बोलो। परवरदिगार हमारी ये मजलिस मजलूम बीबी जहरा की बारगाह में कबूल हो जाए। परवरदिगार ये मजलिस हम सब के लिए बख्शिश का सहारा बन जाए। परवरदिगार जन्नतुल बखी, जन्नतुल मौला, जनाब हमजा, अहले बैत की खबरों पे साया करके रोशन कर दे। सीरिया में सैदानियों के रोजों की हिफाजत फरमा। फर्जंद मजलूम बीबी जहरा, मेरे इमाम जमाना को सलामत रखना। मौला की सलामती के सदक़े में हर बीमार, बहक बीमार, करबला बीमार, मदीना सेहत दे। बिलखसूस हमारे यूनुस शरफ, उनकी वालदा बीमार और दुनिया में जहाँ जहाँ बीमार है, इन सब के लिए परवरदिगार सारे बीमारों को सेहत दे दे। जो बीमारियां हमारे जिस्मों में उसको दूर कर दे, हर आने वाली बीमारी से महफूज रख। अल्लाह तू किसी का मोहताज मत बना सिवाय तेरे और मोहम्मद और आले मोहम्मद के। ये साल हम ज्यादा से ज्यादा आजादारी करें, हमको तौफीक दे कि हम ज्यादा से ज्यादा मजलूम इमाम का जिक्र करें और जिक्र को मजलूम बीबी की बारगाह में कबूलियत तक पहुँचा दे। अल्लाह कोई गम मत दे सिवाय गम हुसैन के। इराक के रास्तों को खोल दे कि हम लोग सब ज्यारात पे जाए इंशाअल्लाह। परवरदिगार दुनिया में जितने मरहूमीन हैं, बिलखसूस खैसर भाई और मोहिब नासिर साहब के, और एक मोमिन का मोटर वाला फैमिली का एक मोमिन का इंतकाल हुआ, सारे मरहूमीन के दर्जात को बुलंद फरमा। मेरे इमाम के जहूर में ताजील फरमा, हम सबको इमाम के नासिरों में शुमार फरमा। एक सूरह फातिहा खैसर भाई के लिए पढ़े, मोहिब नासिर साहब के लिए पढ़े, मोटरोला फैमिली के जो है अपने अपने सारे मरहूमीन के लिए पढ़े, हाजी नाजी के लिए पढ़े और हाजी अली साहब के लिए पढ़े, निज़ामुद्दीन अलिया के लिए पढ़े, शाह बुखारी कराची वालों के लिए पढ़े और ख्वाजा अजमेरी और सारे उलमा, जाकिरीन, मुश्तहदीन, मातमदार, मर्जी आलम, हमारे सारे उलमा, और जिसकी आज पहली रात है उसके लिए सूरह फातिहा। اهدنا الصراط المستقيم صراط